उन्होंने सादिया को देखकर पूछा। बस दरवाजा खटखटा रही थी लेकिन एक खोल ही नहीं रही, पता नहीं इसे क्या हो गया है, सादिया ने हल्की चिंता जताते हुए कहा। असल में वो चिंता नहीं कर रही थी, वो नूर का जुलूस निकालना चाहती थी, झूठी हमदर्दी के लिए आई थी। तबीयत तो ठीक है इसकी? रेहाना बेगम के चेहरे पर फिक्र उभर आई। पता नहीं अम्मी, जब से अरमान के घर से आई है तब से खुद को कमरे में बंद कर लिया है, किसी से बात भी नहीं कर रही और कॉफ़ी भी मना कर दी। रेहाना बेगम ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, अगर किसी ने इसे कुछ कहा होता तो ये सबसे पहले आकर मुझे बताती। मेरी बेटी अपने दिल में कोई बात नहीं रखती। उनकी आवाज़ में भरोसा था। सादिया को ऐसा लगा जैसे रेहाना बेगम की बातों में उसे ही तंज छुपा हुआ था जो नूर के लिए नहीं उसके लिए था। वो चुपचाप वहां से हट गई। कमरे के अंदर नूर अकेली बैठी थी। उसके कानों में बार बार सादिया की बातें गूंज रही थीं। इस घर में रह सकती हो, खाना खा सकती हो, गाड़ी इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन कैश नहीं ले सकती। नूर का दिल जैसे कसक उठा, उसका मन और ज्यादा बुझ गया। क्या सच में मेरा कोई हक नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। उसे सादिया की हर बात तीर की तरह चुभ रही थी और वो चाहकर भी उन ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उधर साकेत नूर के घर आया हुआ था। सुल्ताना बेगम उसके सामने बैठकर उसे चाय दे रही थी, लेकिन साकेत चुपचाप कहीं खोया हुआ था। क्या सोच रहे हो साकेत? चाय ठंडी हो जाएगी, सुल्ताना बेगम ने कहा। ठंडी हो जाने दीजिए, अगर आप चाहें तो मैं पी लेता हूँ। आप खालू से बात कीजिए ना नूर के बारे में, साकेत ने धीरे से कहा। तुम्हारे खालू नहीं मानेंगे नूर के बारे में किसी भी बात पर, सुल्ताना बेगम ने साफ मना कर दिया। तभी उनका फोन बजा। स्क्रीन पर नूर का नाम फ्लैश हो रहा था। हाँ बेटा, कैसी हो? उन्होंने तुरंत कॉल उठाई। अम्मी, अब्बा कहाँ हैं? मेरा फोन नहीं उठा रहे, नूर की आवाज़ में हल्की बेचैनी थी। अभी तक घर नहीं आए, किसी काम में फंसे होंगे, सुल्ताना बेगम ने समझाया। क्या हुआ मुझे बताओ। तभी साकेत ने धीरे से फोन लेकर स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ बेटा, बोलो, सुल्ताना बेगम ने फिर कहा। कुछ पल चुप रहकर नूर बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ बताओ कितने, मैं भिजवा दूंगी, उन्होंने बिना सोचे कहा। 10-20 हज़ार, जितने हो सके, नूर की आवाज़ धीमी हो गई। इतने पैसे? सुल्ताना बेगम चौंक गई। इसीलिए तो मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी, अब्बा से कहो ना, वो नहीं पूछते इतना कि किस लिए चाहिए, नून ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारे अब्बा एक दो दिन में आ जाएंगे, कोर्ट में तारीख है मकान की, उन्होंने समझाने की कोशिश की। लेकिन अम्मी, मुझे अभी चाहिए, नूर की आवाज़ इस बार जिद भरी थी। आप अब्बा से कह देना वो वक्त नहीं देखेंगे, नूर ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर सुल्ताना बेगम सच में सोच में पड़ गईं। कुछ देर बाद कॉल कट गया। फोन रखने के बाद नूर को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन उधर सुल्ताना बेगम की परेशानी बढ़ गई थी। इतनी रात को पैसे कैसे भेजूं, वो खुद से बुदबुदाई। कोई बात नहीं, पैसे मैं भेज देता हूँ, साकेत ने तुरंत कहा। तुम? उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी, फोन से भी पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, या मैं दुकान जाकर उसके अकाउंट में डलवा दूंगा, साकेत ने भरोसे से कहा। ठीक है, सुल्ताना बेगम ने धीरे से हामी भर दी। लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था। माहिरा लॉन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। तभी अरमान उसके पास आकर बैठ गया। क्या तुम्हें भी मॉम की तरह लगता है? अरमान ने कहा। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही माहिरा ने उसे बीच में रोक दिया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे अपने भाई के कैरेक्टर पर पूरा यकीन है, वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन तुमने नूर को बीच में क्यों लाया? उसकी जरूरत नहीं थी, माहिरा ने गहरी सांस ली। नूर तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ जाओगी, वो थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, माहिरा ने सिर हिलाया, वो थोड़ी सी सीधी है, पता नहीं कब क्या जाकर ताई अम्मी को बता दे। नूर इतनी भी बेवकूफ नहीं है, अरमान ने तुरंत कहा, वो समझदार है। माहिरा हल्का सा हंस पड़ी। तुम उसे जानते नहीं हो, जरा प्यार से बात करो तो दिल की हर बात बता देती है, वो थोड़ी देर रुकी फिर बोली। उसे अभी ये समझ ही नहीं है कि कौन सी बात छुपानी चाहिए और कौन सी नहीं। अरमान अब चुप हो गया था, उसके चेहरे पर सोच साफ नजर आ रही थी। माहिरा की बातें कहीं ना कहीं सच भी लग रही थी और डराने वाली भी। डाइनिंग एरिया में माहौल थोड़ा भारी था। जुबेदा बेगम पहले से वहां बैठी थी और रेहाना बेगम के सामने अपनी परेशानियां बयान कर रही थी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रेहाना बेगम ने उन्हें दिलासा दिया। तभी माहिरा वहां आई। नूर कहाँ है? उसने दोनों को देखते हुए पूछा। मैं बुला लाती हूँ,
कहते हुए वो खुद ही नूर के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे अरमान भी चला गया। कुछ देर बाद माहिरा नूर का हाथ पकड़े हुए वापस आई। मुश्किल से लेकर आई हूँ, कह रही थी खाना नहीं खाना, ऐसे ही सो जाएगी, माहिरा ने बताया। आज तो तुम्हारी पसंद का सब बना है बेटा, आओ खाना खाओ, रेहाना बेगम ने प्यार से कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, नूर ने साफ मना कर दिया। तभी सादिया भी वहां आकर बैठ गई। भूख नहीं है या कोई और बात है, उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। रेहाना बेगम ने दोनों की तरफ गौर से देखा। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, अरमान अचानक बोला। असल में उसे और माहिरा को लग रहा था कि नूर उसकी पहले वाली बात से नाराज है। सादिया हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। इतनी रात हो गई है, रेहाना बेगम ने कहा, घर का खाना खाकर बोर हो गई होगी बच्ची, जाने दो, जुबैदा बेगम ने बात संभाल ली। असल में वो नहीं चाहती थी कि नूर की उदासी की असली वजह रेहाना बेगम तक पहुंचे, जबकि नूर के मन में सादिया की वो बातें अब भी गूंज रही थी। इस घर में रह सकती हो, खाना खा सकती हो, लेकिन तुम कैश नहीं ले सकती, तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है? इसी चोट ने नूर को अंदर तक तोड़ दिया था। कुछ देर बाद अरमान, नूर और माहिरा बाहर खाने के लिए चले गए। रेस्टोरेंट में बैठने के बाद माहिरा वॉशरूम के लिए उठ गई। अब टेबल पर सिर्फ नूर और अरमान थे। अरमान ने नूर की तरफ देखा, वो बस चुपचाप प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। क्या हुआ नूर, मुझसे नाराज हो? उसने धीरे से पूछा। मैं तो बस हमारे रिश्ते की शुरुआत कर रहा था ताकि बात निकाह तक पहुंचे, वो समझाने लगा। नूर ने धीरे से सिर उठाया। मुझे आज तक किसी ने खाने का ताना नहीं दिया, उसकी आवाज में दर्द साफ था। अरमान थोड़ा चौंका। मॉम ने तुम्हें कब कुछ कहा? फिर उसे खुद ही एहसास हुआ। सादिया भाभी, उसने धीरे से पूछा। नूर चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम उनका खाना खाती हो? अरमान ने यकीन न होने वाले लहजे में पूछा। तुम बताओ, मैं अभी उनसे बात करता हूँ, वो थोड़ा गुस्से में बोला। नहीं, नूर ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, अगर मैंने रेहान भाई से कहा तो सादिया भाभी मेरी दुश्मन बन जाएंगी, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? अरमान ने कहा। मेरी वजह से उनके बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मैं किसी के रिश्ते में दरार नहीं डालना चाहती, नूर ने साफ शब्दों में कहा। अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन वो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, नूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपके होते मेरी जिंदगी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी आवाज में भरोसा भी था और एक हल्का सा घमंड भी। फिर उसने धीरे से कहा, खाने की फिक्र मत कीजिए, मैंने अम्मी से कह दिया है, सुबह तक पैसे आ जाएंगे, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया करूंगी, मेरे होते हुए तुम्हें पैसे मंगवाने की क्या जरूरत है? अरमान ने तुरंत कहा। मैं हूं ना, नूर ने हल्का सा सिर हिलाया। ये बात पैसे की नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, मैं सिर्फ खाने के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अरमान चुप हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? उसने धीरे से पूछा।
कुछ नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, नूर ने साफ कहा।